नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों नए नियम की पुस्तक में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पाप किए और उनसे मन फिराए। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम निरंतर अपने अध्ययन से उन नई बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। हम पर अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, ताकि वे भी आप पर विश्वास रख पाएं। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पौलुस कुरिन्थ जाने की योजना बनाकर त्रोआस में प्रचार करते हुए फिलिपी नगर आ गया है, जहां तीतुस ने आकर उसे समाचार दिया कि कुरिन्थ की कलीसिया में सुधार आ गया है। अब हम पौलुस की सेवा का महान एवं महिमामय चित्रण को देखते हैं। हम देखेंगे जो उसकी जयवंत सेवा है। जी हाँ, अब हम वहां हैं जहां जो एक सेवक का सामर्थ कहलाता है। यह सेवा की महानता की एक भूमिका है और मैं आनंदित हूं कि हम वही सुसमाचार और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं जैसा हमें सुनाना आवश्यक है। हम एक महान एवं महिमामय चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 2:14। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इससे आश्चर्यजनक परिदृश्य में पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार ऐसा है जैसे जय यात्रा का प्रवेश हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि रोमी जय यात्रा है। रोमी सेनापति यूरोप या अफ्रीका युद्ध करने जाता है और जैसा प्रायः होता था कि विजयी होकर लौटता और एक महान प्रदर्शन के साथ नगर में प्रवेश करता था। उनकी यह झांकी सुबह से शाम तक निकलती थी। वह लूट का सब सामान और पशु प्रदर्शित करता था। जुलूस के आगे वे मनुष्य होते थे जो बंदी बनाए गए थे, उन्हें वहां लाकर स्वतंत्र कर दिया जाता था, वरन रोमी नागरिकता भी दी जाती थी। अंत में वे बंदी होते थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। मित्रों, इस जुलूस में धूप जलाई जाती थी। वे सोचते थे कि उनके देवता ने उन्हें विजय दिलाई है। धूप का धुआं इतना अधिक हो जाता था कि जुलूस देखना भी असंभव होता था। जी हाँ, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो क्या आप तब भी जयवंत हैं जब यीशु को कोई भी ग्रहण न करे? पौलुस कहता है हाँ। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 2:15 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। उस जुलूस में स्वतंत्र किए जाने वाले भी होते थे और मृत्यु पाने वाले भी होते थे, परंतु जय यात्रा के जुलूस में सब होते थे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2:16 में लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, भला इन बातों के योग्य कौन है? जी हाँ, पौलुस इस भावना से अभिभूत था कि इन बातों के लिए कौन है। मेरे मित्रों, संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। इसके तुल्य अन्य कोई कार्य नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन का प्रचार एक अति महिमामय कार्य है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हमें सदैव जयवंत बनाता है। मेरी कलीसिया जिसमें मैं जाता हूं, ऐसा कोई रविवार नहीं था जब कोई मसीह को ग्रहण न करे। कभी कभी तो मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत लोग होते थे। सुसमाचार का प्रचार और जनसमूह द्वारा मसीह को ग्रहण करना एक महान बात होती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि विजय क्या है। हम जीवन की सुगंध हैं, परंतु उनके लिए जो उद्धार पाते हैं, अब उनका क्या होगा जो मसीह को ग्रहण नहीं करते? उनके लिए हम मृत्यु की गंध हैं। यदि आप यहाँ मसीह को अस्वीकार करके बाहर जाते हैं, तो मैं आपका सबसे बड़ा बैरी हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे तो यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना है। तथापि जय यात्रा के जुलूस में सब हैं। अनेकों को मुक्ति नहीं मिलेगी, वे मृत्यु दंड पाएंगे। हमारा अंत कुछ भी हो, हम यीशु की महान जय यात्रा में अवश्य हैं, क्योंकि वह जयवंत होगा। मेरे मित्रों, उसके समक्ष प्रत्येक जन घुटने टेकेगा और प्रत्येक जीव कहेगी कि मसीह यीशु ही प्रभु है। अब प्रभु उद्धार दे या दंड दे, प्रत्येक मनुष्य उसके समक्ष घुटने टेकेगा। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस कहता है, इन बातों के योग्य कौन है? कुछ के लिए तो हम मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। आज धूप की सुगंध ऊपर उठ रही है, वचन का प्रसारण हो रहा है, और हम किसी के लिए जीवन की सुगंध तो किसी के लिए मृत्यु की गंध है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यह मसीह सेवा की पूर्ण योजना है। हमें परमेश्वर का वचन न तो भ्रष्ट करना है और न ही उसका अपवाद करना है और न ही उसे धनोपार्जन का साधन बनाना है। हमें जैसा पवित्र आत्मा प्रकट करता है वैसे ही वचन को सुनाना है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह की महिमामय सेवा में परमेश्वर द्वारा सांत्वना। जी हाँ, सेवा की विजय की चर्चा करने के बाद अब वह सेवा की स्वीकृति की चर्चा करता है, और इस अध्याय में वह इसकी ऊंचाइयां छुएगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? पौलुस कहता है, क्या मुझे अपने नियोजकों से अनुशंसा पत्र की आवश्यकता है? क्या मुझे परमेश्वर से एक पत्र लाना होगा कि मैं उसका सेवक हूँ? पौलुस कहता है, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। किसी भी मसीही सेवा का प्रमाण है कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। वह आपको अधिकार पत्र नहीं देगा, इसका प्रमाण हृदयों पर लिखी पत्रियां हैं। जी हाँ, मैंने हमारी रेडियो सेवा द्वारा मसीह को ग्रहण करने वालों के अनेक पत्र पढ़े हैं। वर्षों पूर्व की बात है, एक भद्र परिवार मेरे पास आया। यदि मेरे रेडियो कार्यक्रम द्वारा इस परिवार के अतिरिक्त किसी ने भी मसीह को ग्रहण नहीं किया होता तो मैं अपने कार्यक्रम को सफल नहीं समझता। उन्होंने मसीह को ग्रहण करने से पूर्व 3 महीने मेरा कार्यक्रम सुना था। इसके पश्चात उस मन भावन परिवार ने मसीह को ग्रहण किया। ये मेरी पत्रियां हैं। मेरी ये पत्रियां अनेक स्थानों में हैं। वे मेरे अनुशंसा पत्र हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, तुम मसीह की पत्री हो जिन्हें सब पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। जी हाँ, इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है। मैं जानता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। सेमिनारी में अर्थात बाइबल अध्ययन के कॉलेज में भी मैं यह मानता था कि यह परमेश्वर का वचन है। मेरे विचार में इसे बौद्धिक रूप से भी परमेश्वर का वचन सिद्ध किया जा सकता है, परंतु आज मैं उस स्तर से आगे बढ़ गया हूँ जहां मुझे वचन को बौद्धिक रूप से सिद्ध करना पड़े। मेरे लिए तो यह एक बड़ा आसान काम है। परमेश्वर के वचन की प्रमाणिकता उसका प्रभाव है। कहा जाता है कि मिठाई का प्रमाण उसे खाने में है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 34:8 में, परख कर देखो कि यह वह कैसा भला है। जी हाँ, यह आपके लिए परमेश्वर की चुनौती है। 2 कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मुझे विश्वास है कि 2 कुरिन्थियों में अब तक आप पौलुस की दुर्बलता देख चुके हैं, परंतु वह कहता है 12 अध्याय के 10 में, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर किसी बड़े एक महान व्यक्ति की खोज में नहीं है, अन्यथा वह आपको और मुझे नहीं बुलाता। जी हाँ, परमेश्वर इस संसार की दुर्बल, नगण्य, अकिंचन वस्तुओं द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। हमारी समृद्धि परमेश्वर से ही है। आइए देखें नई एवं पुरानी वाचा में विषमता। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। नई वाचा के सेवक। हम नई वाचा और पुरानी वाचा में अंतर देखेंगे, जो अनेक रूप में है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पुराने व्यवस्था मृत्यु लाती है। व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है, हमें पापी बनाती है। पत्थर की पट्टियों पर लिखे वचन मनुष्य को दोषी ठहराते हैं। मूसा की व्यवस्था में जीवन नहीं था। यही मुख्य अंतर है जो पौलुस दिखाना चाहता है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मैंने अपने कलीसिया को सदैव चुनौती दी है कि वे मुझे एक भी ऐसा मनुष्य दिखा दें जिसने व्यवस्था के द्वारा उद्धार प्राप्त किया हो। क्या आप जानते हैं कि मूसा जो व्यवस्था लाया था स्वयं व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सका? आप जानते हैं क्यों? वह एक हत्यारा था। परमेश्वर के मन का मनुष्य दाऊद की व्यवस्था के अधीन दोषी था। मेरे मित्रों, आप व्यवस्था के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवस्था आपको दोषी ठहराती है, आपको मृत्यु देती है, परंतु आत्मा आपको जीवन देती है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर से तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ध्यान दीजिए, व्यवस्था मृत्यु की सेवा थी। पत्थरों पर खोदे गए थे अर्थात 10 आज्ञाएं तेजोमय हुई। वह अच्छी थी, परमेश्वर की इच्छा थी, जबकि वह मुझे दोषी ठहराती है। व्यवस्था अनुचित नहीं है। समस्या मेरे साथ है। वह तो केवल प्रकट करती है कि मैं पापी हूँ। मूसा के मुंह पर से तेज के कारण जो घटता जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जी हाँ, मूसा के चेहरे का वह तेज शनय शनय धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ध्यान दीजिए, यदि पुराना नियम तेजोमय है तो नया नियम कितना अधिक और तेज होगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। जी हाँ, धर्मी ठहराने वाली वाचा मसीह की धार्मिकता है जो हमें दी गई है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर होगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। वह जो घटता जाता था, यह व्यवस्था है। ध्यान दीजिए, वह घटता जाता था। अब जो स्थिर रहेगा नई वाचा कैसी महिमामय होगा। पौलुस व्यवस्था और हमारे अनुग्रह के युग में अंतर को स्पष्ट कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें। वह किसके संदर्भ में कह रहा है? हमें यह ध्यान रखना है कि व्यवस्था 2 बार दी गई थी। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से लिखी आज्ञाएं दी थी जिसके द्वारा इसराइल के वंशजों को आचरण करना था और उद्धार पाना था यदि वे उसका यथावत पालन करते, जो वे कभी न कर पाए। उनका न्याय उसी के द्वारा होना था। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ था तब इसराइली पहली 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। निर्गमन 20 उसके 3 पद में, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, और निर्गमन 20 उसके 4 में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। मूसा ने स्वयं कहा था इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 21 में, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। उसमें स्पष्ट कहा गया था, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, जलाने के लिए जलाना और काटने के लिए काटना। वह परिशुद्ध आंतरिक धार्मिकता एवं पवित्रता थी। व्यवस्था का जो भी न्याय होता था वह अपराधी को भोगना आवश्यक था। निर्गमन 32 में इसराइली व्यवस्था आने से पहले ही उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब क्या होगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी प्रजा को देखे। मूसा ने दूर से ही देखा कि वे आज्ञाएं तोड़ रहे थे, अतः मूसा आज्ञाओं की पट्टी शिविर में लाने से डरा, क्योंकि यदि वह उन पट्टियों को उनके मध्य ले आता तो उनका सर्वनाश निश्चित था, क्योंकि उन दो आज्ञाओं के उल्लंघन का दंड था तत्कालिक मृत्यु। अतः मूसा ने उन पट्टियों को तोड़ा और तब शिविर में गया। अब जब मूसा दूसरी बार पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के समक्ष आया, तब हम देखते हैं कि एक घटना घटी। मूसा जानता था कि पाप के कारण संपूर्ण इसराइल का नाश निश्चित था, अतः उसने परमेश्वर से दया की भीख मांगी। परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया और मूसा को फिर से आज्ञाओं की पट्टी दी। मूसा समझ गया था कि परमेश्वर व्यवस्था को दया और अनुग्रह के अधीन कर रहा है। मूसा की व्यवस्था के मध्य में मिलाप वाला तंबू और बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था आवश्यक थी, जो परमेश्वर के निकट आने के माध्यम से, जो इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय के 22 पद में मिलता है, बिना लहू बहाकर पापों की क्षमा नहीं। जी हाँ, परंतु इब्रानियों 12 उसके 14 में हम पढ़ते हैं, उस पवित्र के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हम उसकी उपस्थिति में कैसे जाएंगे? परमेश्वर ही मार्ग बनाएगा और उसने बनाया भी। यह कैसा महिमामय अद्भुत प्रकाशन है! अतः आश्चर्य नहीं कि मूसा का चेहरा तेज से भर गया था। मित्रों, अब मूसा जब पर्वत से उतरा तो उसके हाथों में फिर से व्यवस्था की पट्टियां थी, जो दोष और मृत्यु की सेवा थी और मानवीय धार्मिकता की मांग करती थी, ऐसी धार्मिकता जिसमें मनुष्य कभी सक्षम नहीं हो सकता था, परंतु उसमें बलि चढ़ाने का प्रावधान था जो अनुग्रह को दर्शाता था। यही परमेश्वर का अनुग्रह था जो मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में प्रकट हुआ। पौलुस, जो व्यवस्था पालक था, एक फरीसी था, उसने परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त किया और कहने योग्य हुआ, जिसे हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब यह निस्संदेह महिमा की सेवा है और यही महिमा का सुसमाचार है। व्यवस्था महिमा थी और मनुष्य को उद्धार का मार्ग दर्शाती थी, परंतु मनुष्य उसे पूरा करने में अति दुर्बल था। मित्रों, वह परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला जीवन का महिमामय मार्ग था, परंतु मनुष्य के लिए वह मृत्युदायक हुई, क्योंकि वह भटक चुका था। परंतु मसीह में पूर्ण परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा निस्संदेह महिमा की सेवा है। बाइबल में इस सेवा को परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार भी कहा गया है। हर्षित परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर के हर्ष का कारण क्या है? परमेश्वर का हर्ष इसमें है कि वह मनुष्य से प्रेम करता है और दया करके प्रसन्न होता है। वह मनुष्य का उद्धार करना चाहता है। मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसके 18 पद में हमें कहा गया है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा 33 अध्याय के 11 पद में, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इसराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? जी हाँ, परमेश्वर उद्धार करना चाहता है आपका और मेरा, सारे मानव जाति का। मनुष्य को उद्धार पाता देख उससे प्रसन्नता होती है। हमारे परमेश्वर प्रसन्नचित्त परमेश्वर हैं। यह हमें कैसा महिमामय दृश्य प्रदान करता है। जब मूसा दूसरी बार पहाड़ पर से उतर रहा था तब उसका मन प्रफुल्लित था और उसका चेहरा तेजोमय था। अब इसराइल के पास परमेश्वर की उपस्थिति में आने का माध्यम था बलि चढ़ाने के द्वारा। मैं फिर से यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मूसा ने अपना चेहरा इसलिए नहीं ढांका था कि उसके चेहरे के तेज को इसराइली देख नहीं पा रहे थे, परंतु इसलिए कि उसका तेज ढलता जा रहा था। उसके चेहरे का तेज एक महिमामय बात थी, परंतु वह समाप्त होता जा रहा था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है, हमें पाप और मृत्यु के बारे बताती है, परंतु आत्मा हमें जीवन देती है। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए एक सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर के निकटता में आ जाएं, अपने पापों को उसके सामने में मान लें, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि हमने देखा है कि परमेश्वर मनुष्य के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य बचाया जाए, जीवन पाए। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उद्धार का आनंद प्राप्त करें, अपने जीवन में शांति और आनंद पाएं? यदि हाँ, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। कहें, प्रभु मैं आपके निकटता में आती हूँ, आप मुझे ग्रहण करें, मेरे पापों को क्षमा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में उत्तम बातों को प्राप्त कर लिया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। स्वर्ग है उसका सिंहासन।